ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकारी स्वामित्व वाले रुग्ण उद्योग संचालन के संबंध में व्यवस्थित अध्ययन को प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया जरूरी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने किया संबोधित। कहा श्रम से प्राप्त प्रतिफल का उचित हिस्सा कामगारों को दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए सुनिश्चित। प्रतिनिधि सभा की बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों पर विमर्श रहा जारी। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात पर बल देकर अर्थतंत्र को सही रास्ते पर लाने की बात पर सांसदों ने दिया जोर। और यूक्रेन को 50 अरब डॉलर का कर्ज देने के लिए G7 के नेतागण हुए सहमत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाले रुग्ण उद्योगों के पुनः संचालन की संभाव्यता के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया जाना चाहिए। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंह दरबार में हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि विगत में उदाहरणीय काम नाम के राष्ट्रीय उद्योग धराशी हुए थे, उन्होंने कहा कि उन उद्योगों को पुनः संचालित करने के लिए संभाव्यता का व्यवस्थित अध्ययन किया जाना जरूरी है। विचार विमर्श में अर्थमंत्री वर्षमान पुन, उद्योग मंत्री दामोदर भंडारी, मुख्य सचिव डॉ बैकुंठ अर्याल, अर्थ सचिव मधु कुमार मरासनी, उद्योग सचिव कृष्ण बहादुर राउत लगायत उपस्थित थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि श्रम के आय प्रतिफल का न्यायोचित हिस्सा कामगारों के हाथ आने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हुए 112वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने सभी से श्रम का सम्मान करने की स्वीकृति को विकसित करने की अपील की। प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण और स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से संबंधित विषयों में विचार विमर्श हुआ। विनियोजन विधेयक पर विचार विमर्श में सांसदों ने आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रवर्धन पर बल देकर अर्थतंत्र को सही रास्ते पर लाने के हिसाब से काम करने को लेकर सरकार का ध्यानाकृष्ट किया। सांसदों ने स्थानीय तहों के वार्ड स्तर पर सुपथ मूल्य की दुकानें संचालित कर नागरिकों को सेवा देने और जनता की मांग अनुसार मल बीज आदि उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात पर जोर दिया। इसके अलावा बजट में दर्ज घरेलू मदिरा की ब्रांडिंग की प्रशंसा करते हुए इसके निर्यात प्रवर्धन पर ध्यान देने, घरेलू मध्यम आकार और लघु उद्योग के संरक्षण लगायत विभिन्न निर्णयात्मक मुद्दों पर सांसदों ने सरकार का ध्यानाकृष्ट किया था। इससे पूर्व बैठक के शुरू में बोलते हुए सांसदों ने विपन्न नागरिक उपचार कोष की रकम को 4 लाख से घटाकर 1 लाख किए जाने पर असंतुष्टि जताई और पुराना ही व्यवस्था कायम रखने की मांग की थी। साथ ही तराई में गर्मी के कारण जनजीवन कष्टकर होते गए हालात का जिक्र करते हुए सांसदों ने बिजली की आपूर्ति में समय समय पर हो रहे अवरोध को हटाने, काठमांडू में मेलमची का पानी सभी जगह पहुंचाने लगायत मुद्दों पर भी सरकार का ध्यानाकृष्ट किया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि सूचना के हक के क्रियान्वयन से अरबों का राजस्व रिसाव होने से बचकर राज्य को फायदा हुआ है। आज सिंह दरबार स्थित राष्ट्रीय सभा के विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति की हुई बैठक में मंत्री शर्मा ने कहा कि नागरिक सूचना मांगे या नहीं, पर सार्वजनिक निकाय का दायित्व है कि वे सूचना प्रवाह करें और उन सूचनाओं से जनता और राज्य को फायदा होगा। शासकीय सुधार एवं सुशासन प्रवर्धन कराने में सूचना के हक के क्रियान्वयन में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना आयोग के भूमिका के विषय पर हुए विचार विमर्श में मंत्री शर्मा ने कहा कि रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन की पहुंच को देशव्यापी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विधायन व्यवस्थापन समिति ने मीडिया काउंसिल विधेयक में सरकार वालों के साथ विचार विमर्श किया है। आज सिंह दरबार में हुए विचार विमर्श में फ्रीडम फोरम के अध्यक्ष एवं पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दहाल ने कहा कि काउंसिल स्वायत्त होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक वर्ष 2081-82 के लिए पेश किए गए वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम को आज प्रदेश सभा की बैठक ने सर्वसम्मति से पारित किया है। नीति तथा कार्यक्रम में उठे प्रश्नों के जवाब देने के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने प्रदेश सभा के सदस्यों द्वारा रखे गए सुझावों को बजट में समेटने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोलकर नहीं काम करके दिखाने के पक्ष में सहयोग के लिए सभी से अपील की थी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र को अनिवार्य किया है। राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य किए जाने के बाद इन दिनों जिला प्रशासन कार्यालयों में परिचय पत्र बनाने वालों की भीड़ बढ़ गई है। राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभाग के महानिदेशक युवराज कटेल के मुताबिक पहले चरण में 28 जिलों में आगामी श्रावण 1 गते से सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण करने के लिए राष्ट्रीय परिचय पत्र अनिवार्य किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि मौजूदा समय में विभाग से उन जिलों में विवरण पंजीकरण के लिए जनशक्ति भी बढ़ाकर स्थानीय तहों के समन्वय में जिला प्रशासन कार्यालय पालिका और वार्ड स्तर पर अभियान संचालित कर विवरण पंजीकरण का काम हो रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। G7 देश यूक्रेन को $50 अरब की आर्थिक मदद देने के लिए सहमत हो गए हैं। खास बात यह है कि ये $50 अरब की रकम रूस की जब्त संपत्ति में से ही दिए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि G7 सम्मेलन से पहले उनके बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देने पर फोकस रहेगा। G7 देश रूस की जब्त संपत्ति $325 अरब के ब्याज से मिले पैसों से ही यूक्रेन की मदद करने पर विचार कर रहे हैं। रूस के $325 अरब रूसी सेंट्रल बैंक के हैं, जिन्हें G7 देशों द्वारा जब्त किया गया है। इस रकम में से कीव को $50 अरब का लोन दिया जा सकता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी स्वामित्व वाले रुग्ण उद्योग संचालन के संबंध में व्यवस्थित अध्ययन को प्रधानमंत्री प्रचंड ने बताया जरूरी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने किया संबोधित। कहा श्रम से प्राप्त प्रतिफल का उचित हिस्सा कामगारों को दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए सुनिश्चित। प्रतिनिधि सभा की बैठक में विनियोजन विधेयक 2081 अंतर्गत विभिन्न शीर्षकों पर विमर्श रहा जारी। आयात प्रतिस्थापन और निर्यात पर बल देकर अर्थतंत्र को सही रास्ते पर लाने की बात पर सांसदों ने दिया जोर और यूक्रेन को $50 अरब का कर्ज देने के लिए G7 के नेतागण हुए सहमत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।